सुजीत कुमार की आवाज में मोहम्मद बिन तुगलक का रिकॉर्डिंग होने जा रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन प्रस्तुत करें, या मोहम्मद बिन तुगलक की गृह नीति की समीक्षा करें, या मोहम्मद बिन तुगलक के नवीन सुधारों एवं इनकी सफलता की परीक्षा करें, या मोहम्मद बिन तुगलक की विदेश नीति की समीक्षा करें, या मोहम्मद बिन तुगलक के समय के विद्रोहों एवं सल्तनत पर इनके प्रभाव की समीक्षा करें। आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का ज्येष्ठ पुत्र था। उसका प्रारंभिक नाम जूना खां था। वह 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसके राज्यारोहण का किसी ने भी विरोध नहीं किया। राज्यारोहण के समय उसे किसी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। सर्वत्र राज्य में शांति सुव्यवस्था व्याप्त थी। राज्य की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। राज्यारोहण इस प्रकार अपने पिता की हत्या के पश्चात 1325 ईस्वी में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का के नाम से गद्दी पर आरूढ़ हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के चारित्रिक गुण दोष एवं उसके शासन का महत्व, मध्ययुगीन सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सबसे अधिक शिक्षित विद्वान और योग्यतम व्यक्ति था। वह कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था तथा उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वह एक ओर कुशल कवि तथा ललित कला का प्रेमी था तो दूसरी ओर तर्क गणित दर्शन तथा भौतिक शास्त्रों का प्रखंड विद्वान। वह नाना प्रकार के रोगों की चिकित्सा भी बड़े ढंग से कर सकता था। चिकित्सकों से बड़ी योग्यता से वाद विवाद करता था और उनकी त्रुटियां उन्हें बतलाया करता था। वह अत्यंत दयावान एवं उदार था। दोष, मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र के उज्जवल पक्ष के साथ साथ उसका अंधकार में पक्ष भी है। उसमें सामान्य स्थिर बुद्धि, व्यवहारिक निर्णय, धीरज तथा संतुलन का अभाव था। प्रमाद और अहंकार का उसमें बाहुल्य था। वह दूसरे अनुभवी शक्तियों और अधिकारियों का परामर्श भी नहीं लेता था। उसके विस्तृत अध्ययन और ज्ञान कोश ने उसे आवश्यकता से अधिक आदर्शवादी तथा अभिमानी बना दिया। इसका प्रभाव, मोहम्मद तुगलक के इन चारित्रिक गुणों तथा दोषों का उसकी नीतियों, योजनाओं, अभियानों तथा उसकी सफलताओं एवं असफलताओं के ऊपर गहरा असर पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक की गृह नीति को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक विवादास्पद शासक माना जाता है। उसके चरित्र में विरोधी गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण था। इसलिए जहां उसने एक तरफ अपने सुधारों द्वारा राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करना चाहा, वहीं दूसरी ओर उसने ऐसी योजनाएं भी बनाई जो सफल नहीं हो सकी। पहला, पदों और उपाधियों का वितरण। दूसरा, मोहम्मद तुगलक की व्यक्तिगत मान्यताएं। तीसरा, सुल्तान द्वारा अपनी शक्ति का सुदृढ़करण। चौथा, प्रशासकीय पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति। पांचवा, राजनीति से उलेमा का प्रभाव समाप्त करना। छठा, हिंदुओं एवं अन्य धर्मों के प्रति नीति। सातवां, न्याय संबंधी सुधार। आठवां, खलीफा से संबंध। और नवा, शिक्षा साहित्य एवं कला कौशल का विकास। हिंदुओं के प्रति उसने सम्मानजनक एवं उदार नीति अपनाई। उन पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए। प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की भी नियुक्ति की गई। वह हिंदुओं के धार्मिक समारोहों एवं उत्सवों में भी भाग लेता था। सुल्तान की इस नीति से हिंदू एवं जैन भी सुल्तान के समर्थक बन बैठे। उलेमा वर्ग इसका आलोचक बन बैठा। फलतः सुल्तान के जीवन काल में ही साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। मोहम्मद की नवीन योजनाएं। मोहम्मद एक विलक्षण प्रतिभा का शासक था। वह जनहित एवं राज्य की समृद्धि के लिए सदैव नई योजनाएं बनाता रहता था। इतिहासकार बर्नी ने सुल्तान की 5 नवीन योजनाओं का उल्लेख किया है। दुआब में राजस्व की वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुराशन आक्रमण की योजना तथा कराचिल अभियान। यद्यपि सुल्तान ने निष्ठापूर्वक इन योजनाओं पर अमल किया, परंतु ये सभी योजनाएं उनके कारणों से विफल हो गई। तथापि इससे इन योजनाओं का महत्व कम नहीं हो जाता। पहला, राजधानी का परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल की प्रमुख घटना है राजधानी परिवर्तन। गद्दी पर बैठने के पश्चात सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाग की राजधानी बनाने का निश्चय किया। इसके अनेक कारण थे। पहला, यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। दूसरा, उत्तर पश्चिम सीमा से दूर होने के कारण दिल्ली जैसा इस पर मंगोलों के आक्रमण का भय नहीं था। तीसरा, राजधानी परिवर्तन के द्वारा दक्षिण पर प्रभावशाली प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। चौथा, दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति को भी विकसित करना चाहता था। अतः यह योजना सुल्तान की राजनीतिक सूझबूझ का परिचायक है। सारी प्रशासनिक एवं सैनिक व्यवस्थाएं दिल्ली से दौलताबाग कर दी गई, परंतु दौलताबाग पहुंचकर सुल्तान ने देखा कि दक्षिण से पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण करना ज्यादा कठिन था, अतः वह पुनः वापस दिल्ली लौट गया। इस क्रम में दिल्ली का वैभव एवं गौरव क्षतिग्रस्त हो गया। इसका तात्कालिक परिणाम था सुल्तान की अलोकप्रियता एवं उसके विरुद्ध बढ़ता जनाक्रोश। दूसरा दूरगामी परिणाम अधिक महत्वपूर्ण था। इस योजना के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ। दूसरा, मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा चलाना। मोहम्मद तुगलक की दूसरी विवादास्पद योजना थी सांकेतिक मुद्रा का चलाना। इन सांकेतिक मुद्राओं का चलन आरंभ करने से पूर्व उसने प्रचलित मुद्रा व्यवस्था में ही अनेक सुधार किए। सिक्कों को नए एवं कलात्मक ढंग से ढलवाया गया। अन्य अनेक छोटे छोटे सिक्कों एवं चांदी का अदली भी चलाया गया। कांसे के सिक्के भी चलाए गए थे, लेकिन जाली सिक्के के कारखाने खुल जाने के बाद विभिन्न प्रांतों के हिंदुओं ने लाखों करोड़ों रुपए के सिक्के बना दिए, अतः इन सिक्कों का अवमूल्यन हो गया। विदेशी व्यापारी भारत से माल लेना बंद कर दिए, जिससे आयात में भारी कमी आई और आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सुल्तान की यह नीति बहुत अधिक घातक सिद्ध हुई। बाजार का सारा सांकेतिक सिक्का राजकोष में चला गया। सुल्तान की यह योजना विफल नहीं होती अगर उसने जाली सिक्कों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया होता। तीसरा, अकाल एवं राहत कार्य। सुल्तान मोहम्मद के समय में अनेक बार महामारी का प्रकोप फैला। दुआब दक्षिण भारत एवं गुजरात में अनेक बार सूखा पड़ा। देश के अनेक भागों में महामारी फैल गई। दिल्ली में इतने व्यक्ति मरे कि दिल्ली की हवा दूषित हो गई। अकाल एवं महामारी से त्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अनेक उपाय किए गए। सूखे वाले क्षेत्रों में लगान वसूली माफ कर दिया गया, लगान राशि घटा दी गई, किसानों को आर्थिक सहायता दी गई। चौथा, राजस्व नीति। दुआब में कर की वृद्धि। अलाउद्दीन के पश्चात मोहम्मद ही ऐसा शासक था जिसने भू राजस्व व्यवस्था की तरफ पूरा ध्यान दिया। अनेक अनियमितताओं को दूर किया गया। सभी जगह से नियमित रूप से लगान प्राप्त होने लगा। लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के कार्यों के निरीक्षण के लिए नए पदाधिकारी की बहाली हुई। दुआब से प्राप्त होने वाली लगान की राशि में वृद्धि करना, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि खुराशान अभियान की तैयारी से आर्थिक संकट की स्थिति आ गई थी। दुआब उपजाऊ प्रदेश था, अतः आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने कर लगाया। इसी समय दुआब में सूखा पड़ा, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, परंतु लगान अधिकारी कड़ाई से कर वसूला करते थे। पांचवा, कृषि के विस्तार की योजना। दुआब में कर वृद्धि के अतिरिक्त सुल्तान ने कृषि की व्यवस्था सुधारने का भी प्रयास किया। कृषि के विस्तार के लिए प्रयास किए गए। इस उद्देश्य से एक नया विभाग दीवान एक कोटी स्थापित किया गया। इसका प्रधान अमीर एक कोही था, उसके अधीन कृषि विभाग रखा गया। वृहद कृषि की योजना के क्रियान्वयन के लिए दुआब का ही एक क्षेत्र चुना गया था। सिंचाई के लिए उसने कुएं खुदवाए तथा किसानों को बीज और आवश्यक धन देने की व्यवस्था की गई। इस विकास योजनाओं में भाग लेने वालों को प्रोत्साहन के तौर पर इनाम भी दिया जाता था। इस प्रकार सुल्तान की सभी योजनाएं विफल हो गई। इनकी विफलता इसलिए नहीं हुई कि इन योजनाओं में कोई गड़बड़ी भी थी या उनका उद्देश्य गलत था, बल्कि विफलता का कारण सुल्तान की लापरवाही थी। मोहम्मद तुगलक की विदेश नीति। मोहम्मद तुगलक अलाउद्दीन की भांति एक महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी शासक था। वह भारत की सीमाओं के बाहर के देशों को जीतने की महत्वाकांक्षा रखता था। सुल्तान की विजय योजनाओं के संबंध में शहाबुद्दीन अल उमरी ने लिखा है, यह सुल्तान उस समय तक नहीं थकता जब तक कि वह विजय कार्य पूरा नहीं कर लेता था। फर्शता लिखा है, वह जितना अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध था उतना ही वह युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता के लिए। पहला, खुरासन विजय की योजना। साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से इसने खुरासन देश पर आक्रमण करने की योजना बनाई तथा अपने सैनिकों का संगठन मजबूत किया, लेकिन नाकाम रहा। दूसरा, राजपूत राज्यों पर विजय। तीसरा, नगरकोट की विजय, पंजाब के कांगड़ा जिले में स्थित नगरकोट का दुर्ग। चौथा, कराजाल पर आक्रमण। सुल्तान हिमाचल प्रदेश के राज्यों का अधिकृत करना चाहता था तथा अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित रखना चाहता था। उसने कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित कराजाल पर आक्रमण किया, परंतु विद्वानों में इसे लेकर मतभेद है। पांचवा, दक्षिण भारत के प्रदेशों की विजय। छठा, विदेशों से संबंध। मोहम्मद ने विदेशी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। उसके समय में एशिया के विभिन्न भागों से दूत मंडल दिल्ली आए तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण भागों संबंध का नया अध्याय जोड़ा। छठा, सातवां, कराची विजय की योजना। खुरासान की तरह सुल्तान ने कराची विजय की योजना बनाई। यह मध्य हिमालय में स्थित था। कुछ विद्वानों ने इसे चीन का प्रदेश माना है। सुल्तान की यह योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकी। संक्षिप्त रूप में मोहम्मद बिन तुगलक को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इसका शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा। इसका पहले का नाम जूना खान था। कुछ इतिहासकारों के शब्दों में मोहम्मद तुगलक ने स्वयं द्वार बनाकर अपने पिता को मारने का षड्यंत्र किया था। मोहम्मद तुगलक बड़ा विद्वान, वक्ता और साहित्यिक व्यक्ति था। वह ज्योतिष, गणित और कला में बड़ा प्रवीण था। वह दानी भी था, किंतु बड़ा जिद्दी, क्रोधी और हठी स्वभाव का बादशाह था। उसकी जिद के कारण ही उसकी प्रजा उसके असंतुष्ट थी। उसने शासनकाल का तत्कालीन लेखकों जियाउद्दीन बरनी, इब्न बतूता, फरिश्ता और बदौनी ने वर्णन किया है। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर मेहंदी हसन ने भी मोहम्मद तुगलक पर इतिहास लिखा है। मध्यकालीन लेखक मोहम्मद तुगलक को जिद्दी, सनकी और पागल बादशाह कहते हैं, जबकि आधुनिक इतिहासकार इसको बड़ा योग्य, विद्वान और प्रतिभा संपन्न बादशाह कहते हैं, किंतु सब लेखक इसकी दानवीरता और क्रोधी स्वभाव को स्वीकार करता है। इसकी विजयों को देखें तो पहला खुरासान आक्रमण की योजना थी, किंतु आक्रमण नहीं किया। दूसरा, 1337 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने हिमालय के राजा पर आक्रमण किया, नगरकोट विजय किया और कांगड़ा कस्तूप पर आक्रमण किया। पहले सुल्तान को सफलता मिली, किंतु बाद में उसकी सारी सेना मारी गई और केवल 10 घुड़सवार शेष बचकर आए। तीसरा, मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी विजय व तेलंगाना विजय किए। मोहम्मद तुगलक की योजनाएँ, पहला, दुआब में कर वृद्धि। दूसरा, 1326 से 1327 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाग राजधानी परिवर्तन किया। तीसरा, 1330 ईस्वी में तांबे के सिक्के को चलाना। चौथा, खुरासान विजय की योजना। पांचवां, चीन पर आक्रमण करने की योजना, जिसमें करतीपुर हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था। इन सब योजनाओं का प्रजा ने स्वागत नहीं किया और साम्राज्य में विद्रोह हो गया।